بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتا متروں، آج کے کارکرم کا شبھ آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ بقرہ کی 154 سے 157 آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری پرہیزگار۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور جو لوگ ایشور کے مارگ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو جیوت ہیں پرندو تم اسے سمجھ نہیں پاتے، اور نسندے ہم تھوڑے بھے، تھوڑی بھوک، کچھ جان مال اور اتپاد میں کمی سے تمہاری پریکشا لیں گے، اور ہے پیغمبر، آپ دھیروانوں کو شبھ سوچنا دے دیں جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں کہ نسندے ہم ایشور ہی کے لیے ہیں اور اسی کی اور واپس جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے پالنہار کی اور سے آشیرواد اور دیا ہے، اور یہی لوگ صحیح مارگ پر ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. شوتاؤ میں ہوں احمد عباس, میرا سلام سویکار کیجیے. ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9390 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.irib.ir, اور ہماری ویب سائٹ ہے parstoday.com/hi. واٹس ایپ پر ہمارا سمپرک نمبر ہے 0098-9035065492. شوتاو, آج گروار ہے, دے ماس کی 9, جمادی الاول کی 25 اور دسمبر کی 30 تاریخ. اس سمے کی سبھا میں کچھ کارکرم آپ کی سیوا میں پرستت کیے جائیں گے. ان کارکرموں کی روپریکھا اس پرکار ہے. سب سے پہلے آپ سنیں گے انتراشٹریہ سماچار, جس کے بعد راجنیتک چرچا کا کارکرم آپ کی سیوا میں پرستت کیا جائے گا. راجنیتک چرچا کے بعد اسلامی گڑتنتر ایران کے وشو وکھیات کمانڈر جنرل شہید قاسم سلیمانی کے اپلکش میں ایک وشیش کارکرم ہم آپ کو سنائیں گے. شدہ سبھا کا انتم کارکرم ہوگا آج کی بات. تو یہ ہے کارکرموں کی روپریکھا. اب سے کچھ کشنوں بعد آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سنیں گے انتراشٹریہ سماچار. یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. لیجیے شروتاؤ, اب مریم مہردادی اور احمد عباس سے سنیے وشو سماچار.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش. ایران نے کہا ہے کہ پرمانو ڈیل کی سمبھاونا بڑھ رہی ہے. ایران کے سنسد سبھاپتی نے کہا ہے کہ شہید سلیمانی کا خون امریکہ کو علاقے سے بے عزت کر کے بے دخل کر دے گا. بھارت میں ہیٹ سپیچ اور مہاتما گاندھی کو گالیاں دینے والے چرم پنتھی سادھو کو پولیس نے دھر دبوچا ہے. کورونا کا اومیکرون ویریئنٹ تیزی سے دنیا میں پاؤں پسار رہا ہے. اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے.
اسلامی گڑتنتر ایران نے کہا ہے کہ پرمانو ڈیل کی بحالی کی سمبھاونا بڑھ رہی ہے. وہیں دوسری اور یورپی دیشوں کی اور سے بیان آیا ہے کہ وینا وارتا میں ایران کی اور سے رکھی گئی مانگوں کے بارے میں تکنیکی پرگتی ہو رہی ہے. ایران کے مکھیہ وارتاکار علی باقری کنی نے کہا کہ وینا میں جاری وارتا سارتھک روپ سے آگے بڑھ رہی ہے اور ایران پرمانو سمجھوتے کی پرتیبدھتاؤں کی اور تبھی واپس لوٹے گا جب اس پر لگائے گئے پرتیبندھ ویوہارک روپ سے ہٹ جائیں گے. علی باقری کنی نے کہا کہ پابندیاں ہٹانے اور اس سندرب میں گارنٹی دینے کے ایران کے پرستاو کو جتنی جلدی سویکار کر لیا جائے گا اتنی جلدی سمجھوتا ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ سمجھوتا تو بہت کم سمے میں ہو سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ پابندیاں ہٹانے کے معاملے میں واشنگٹن گمبھیرتا دکھائے. علی باقری کنی کا کہنا تھا کہ ایران پر پرمانو کارکرم کیول ایران کا پرمانو کارکرم کیول ناگرک لکشیوں کے لیے ہے اور ایران 60% کے گریڈ سے زیادہ یورینیم کا سمردھن نہیں کرے گا. دوسری اور پرمانو سمجھوتے میں شامل دیشوں نے امریکہ کے پرتندھیوں کے ساتھ وینا میں ایک بیٹھک کی, مگر ایران اس بیٹھک میں شامل نہیں ہوا. ایران وینا میں ان دیشوں سے وارتا کر رہا ہے جو پرمانو سمجھوتے سے نکلے نہیں ہیں. اس بیٹھک کے بعد روس کے پرتندھی میخائل اولیانوف نے کہا کہ اس وارتا میں نظر آنے والے سارتھک ماحول سے سب کو سنتشٹی ہوئی. یورپی سنگھ کے پرتندھی اینرک مورا نے کہا کہ سبھی پکشوں میں وارتا کو کامیاب بنانے کا سنجیدہ ارادہ دکھائی دے رہا ہے اور ایران کی مانگوں کے سندرب میں تکنیکی بندوؤں پر پرگتی دکھائی دے رہی ہے. وہیں دوسری اور جرمنی کے ودیش منترالے نے ایک بیان میں کہا کہ جرمنی, فرانس, بریٹین اور अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच वियना वार्ता के ताजा दौर के बारे में चर्चा हुई। इस बीच रूस के प्रतिनिधि ओलियारोफ ने कहा कि ईरान के विषय में रूस और अमेरिका के वरिष्ठ संबंधित अधिकारियों की एक मुलाकात हुई, जिसमें परमाणु समझौते को बचाने के लिए दोनों पक्षों के बीच कोऑर्डिनेशन के संबंध में बात हुई।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के संसद सभापति मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि हमने शुरू से कहा है कि शहीद सुलेमानी का खून इलाके से अमेरिका को बेदखल करेगा और आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका किस बेइज्जती के साथ इलाके से बाहर जा रहा है। गालिबाफ ने 30 दिसंबर 2009 के ऐतिहासिक जन प्रदर्शनों की याद में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमें शहीद सुलेमानी की कमी का शिद्दत से एहसास है। उन्होंने कहा कि जनरल सुलेमानी जनता के लिए समर्पित थे, जहां भी जनता को उनकी मदद की ज़रूरत होती वो वहां हाजिर रहते थे। संसद सभापति गालिबाफ ने कहा कि शहीद सुलेमानी 25 साल की उम्र में ही कमांडर बन गए और उन्होंने 40 साल तक इस प्रकाशमान मार्ग पर लगातार सफ़र किया। 30 दिसंबर की तारीख इस्लामी गणराज्य ईरान के इतिहास में खास महत्व रखती है। ईरान की इस्लामी व्यवस्था के खिलाफ जून 2009 से हिंसक रूप से सक्रिय पश्चिमी व क्षेत्रीय ताकतों तथा ईरान के भीतर कुछ उपद्रवी तत्वों के खिलाफ इस दिन जनता ने देश भर में प्रदर्शन किए।
यूरोप के एक सांसद का कहना है कि दाइश को पराजित करने के लिए जनरल कासिम सुलेमानी ने जितने प्रयास किए हैं दुनिया में किसी ने भी नहीं किए। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार आईआरजीसी के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत की दूसरी वर्षी के अवसर पर यूरोप के सांसद मैक वेलास ने कहा कि इराक में आतंकवादी गुट दाइश को पराजित करने के लिए जनरल कासिम सुलेमानी ने जितने प्रयास किए उतने किसी ने भी नहीं किए, लेकिन विश्व समुदाय ने अमेरिका के हाथों उनकी हत्या की निंदा तक नहीं की।
इस्लामी गणतंत्र ईरान ने सिमुर्ग नाम का सैटेलाइट कैरियर अंतरिक्ष की ओर रवाना कर दिया है, जो अपने साथ 3 शोध सैटेलाइट लेकर गया। ईरान के रक्षा मंत्रालय में अंतरिम विभाग के प्रवक्ता सैयद अहमद हुसैनी ने सिमुर्ग के माध्यम से 3 सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाने की सूचना दी। प्रवक्ता ने बताया कि ईरान ने स्थानीय रूप से अंतरिक्ष तकनीक को विकसित करने और छोटे सैटेलाइट अपने सफीर और कासिद जैसे सैटेलाइट कैरियरों से अंतरिक्ष में भेजने के बाद एक क्षमता को विस्तार देने का फैसला किया और इसी कार्यक्रम के तहत इमाम खुमैनी अंतरिक्ष छावनी और सिमुर्ग सैटेलाइट कैरियर पर काम शुरू हुआ था।
सऊदी नरेश ने एक बार फिर ईरान पर निराधार आरोप लगाए हैं। सऊदी अरब के नरेश सलमान बिन अब्दुल अजीज ने बुधवार को अपने वार्षिक संबोधन में ईरान पर विध्वंसक कार्यवाही करने के आरोप लगाते हुए दावा किया कि ईरान क्षेत्र के समस्त संकटों और समस्याओं की जड़ है। सऊदी नरेश ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम के बारे में विश्व समुदाय के साथ सहयोग न करने का आरोप लगाया।
भारत में हेट स्पीच और महात्मा गांधी को गालियां देकर चर्चा में आने वाले चरमपंथी साधु कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद चरमपंथी साधु को रायपुर ले जाया गया। आरंभिक जांच के बाद पुलिस ने कालीचरण महाराज के खिलाफ राजद्रोह की धाराएं भी जोड़ दी हैं। रायपुर में हुए धर्म संसद नाम के एक कार्यक्रम का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अकोला का साधु कालीचरण महाराज मंच पर महात्मा गांधी को गालियां दे रहा था और गांधी के हत्यारे गोडसे को नमन कर रहा था। चरमपंथी साधु को रायपुर पुलिस अदालत में पेश कर रही है। पुलिस के अनुसार कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें अलग अलग राज्यों में भेजी गई थीं। रायपुर के SP प्रशांत अग्रवाल के अनुसार बागेश्वर धाम के पास एक व्यक्ति के घर से तड़के 4 बजे कालीचरण की गिरफ्तारी की गई। उसने पास में एक लॉज भी बुक कर रखा था। वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार में ठन गई है।
भारत में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 19 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के विरोध में प्रदर्शनों के दौरान 22 मुस्लिमों की मौत, बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने और मुस्लिमों की संपत्ति नष्ट करने के 2 साल बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आखिरकार आरोपों की जांच शुरू की। नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों की कई शिकायतों के आधार पर जांचकर्ता अधिकारी राजवीर सिंह की अध्यक्षता में अक्टूबर 2021 में जांच शुरू कर चुके हैं। इस तरह की एक शिकायत हेनरी टिफांगने और माजा दारुवाला ने
दायर की, जिसमें दिसंबर 2019 में उत्तर प्रदेश में मौलिक अधिकारों के पूर्ण अवहनन को उजागर किया गया।
कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। बुधवार को फ्रांस में 24 घंटे में 2,00,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बहुत बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिविये वेरन ने कहा है कि देश में संक्रमण के मामलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ते हुए 2,00,000 का आंकड़ा पार कर गई। उन्होंने बताया कि बुधवार को कुल 2,08,000 मामले सामने आए। फ्रांस में इस समय लगभग 3,000 कोरोना मरीजों की स्थिति गंभीर है और वे ICU में हैं, जबकि 240 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका और यूरोप के एक बड़े भाग में ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रसार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कहा जाता है कि वायरस काबू से बाहर हो चुका है।
इराक के प्रधानमंत्री का कहना है कि अमरीकी गठबंधन के सारे लड़ाकू सैनिक इराक से निकल जाएंगे। फास्ट न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इराक से अमरीका के लड़ाकू सैनिकों के निकलने की समय अवधि समाप्त होने के साथ ही प्रधानमंत्री ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया कि अमरीकी गठबंधन के सारे लड़ाका सैनिक इराक से निकल जाएंगे। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अलगाजमी ने ट्वीट किया कि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के लड़ाका सैनिकों की ड्यूटी खत्म हो गई और इस देश से गठबंधन के सैन्य उपकरण और सैनिकों के निकलने की प्रक्रिया पूरी हुई है।
यमन के एक सीनियर नेता मोहम्मद अल बुखैती ने कहा है कि यमन की जंग खत्म होने के चरण में है और यमन पर हमला सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात के हक में नहीं है, इसलिए उन्हें शांति और सुलह की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। फास्ट न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के सदस्य और अंसारुल्ला के सीनियर नेता मोहम्मद अल बुखैती ने कहा कि हमलावर शक्तियां यमन के खिलाफ भरपूर शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं, किंतु यमन की सियासी जनता और प्रतिरोध का मोर्चा इन हमलों का डटकर मुकाबला कर रहा है।
बोस्निया में युद्ध अपराध के प्रोसिक्यूटर ने 9 बोस्नियाई सर्बों के खिलाफ 1992 से 1995 तक जंग के दौरान 7 परिवारों सहित लगभग 100 मुस्लिम बोस्नियाक्स को कत्ल करने की चार्जशीट दाखिल की है। ऑर्थोडॉक्स सर्बों, कैथोलिक क्रोट्स और मुस्लिम बोस्नियाक्स के बीच बड़ी विनाशकारी लड़ाई हुई थी, जिसमें लगभग 1,00,000 लोग मारे गए थे। जंग खत्म हो जाने के 26 साल बाद भी बोस्निया उन लोगों की तलाश कर रहा है जो लापता हो गए थे और जो संदिग्ध अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। इसी समय बलकान देश जंग के बाद अपने गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, जिसमें बोस्निया के सर्ब नेताओं की ओर से आर्म्ड फोर्सेस सहित बोस्निया की राष्ट्रीय संस्थाओं से निकल जाने की धमकी से एक नया संकट खड़ा हो जाने का डर है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार कीजिए। इराक में प्रतिरोध मोर्चे के शहीदों की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई, जो 2 साल पहले इराक सीरिया सीमा पर आतंकवादी अमेरिकी सैनिकों के हाथों शहीद हुए थे। साथ ही पूरे इराक में शहीद जनरल कासिम सुलेमानी और शहीद अबू मेहंदी अल मुहंदिस जैसे प्रतिरोध के कमांडरों को श्रद्धांजलि देने का हफ्ता भी शुरू हुआ। इराकी जनता ने प्रतिरोध के कमांडरों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके अनुसरण का वचन दिया। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काजमी ने 29 दिसंबर को एक ट्वीट में कहा है कि देश में अमेरिका के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के सैनिकों की तैनाती समाप्त हो गई है और उसके सभी सैनिक और सैन्य उपकरणों को इराक से बाहर निकाल लिया गया है। रणनीतिक वार्ता के दौरान बनने वाली सहमति के अनुसार इराक में अमेरिकी सैनिकों की भूमिका अब केवल परामर्शदाता की होगी। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने वर्ष 2003 में इराक पर हमला किया था और सद्दाम के बासी शासन का अंत करके इस अरब देश पर कब्जा कर लिया था। श्रोताओं, भारत के चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि कोरोना और ओमिक्रोन की वजह से अगले वर्ष होने वाले विधानसभा के चुनाव टाले नहीं जाएंगे। चुनाव आयोग ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक की और कहा कि विधानसभा के चुनाव की तारीख की घोषणा 5 जनवरी के बाद की जाएगी। चुनाव आयुक्त ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों की मांग है कि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए चुनाव सही समय पर कराए जाएं।
सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव।
इराक में प्रतिरोध मोर्चे के शहीदों की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई जो 2 साल पहले इराक सीरिया सीमा पर आतंकवादी अमेरिकी सैनिकों के हाथों शहीद हुए थे। साथ ही पूरे इराक में शहीद जनरल कासिम सुलेमानी और शहीद अबू मेहदी अल मुहंदिस जैसे प्रतिरोध के कमांडरों को श्रद्धांजलि देने का हफ्ता भी शुरू हुआ। इराकी जनता ने प्रतिरोध के कमांडरों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके अनुसरण का वचन दिया। जलाल खालिदी की रिपोर्ट पेश करने साथी अख्तर अब्बास।
इराक में प्रतिरोध के मोर्चे के शहीदों की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई जो 2 साल पहले इराक सीरिया सीमा पर आतंकवादी अमरीकी सैनिकों के हाथों शहीद हुए थे। इसी के साथ पूरे इराक में जनरल कासिम सुलेमानी और जनरल अबू मेहदी मुहंदिस जैसे प्रतिरोध के कमांडरों को श्रद्धांजलि देने का हफ्ता शुरू हुआ। इराकी जनता ने प्रतिरोध के कमांडरों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आज्ञा का पालन करने का वचन दिया और उनसे बयत की। एक इराकी नागरिक का कहना है कि इराकी जनता अपने देश की अखंडता और संप्रभुता पर बल देती है और हम अमरीकी आतंकवादियों के हाथों मारे गए शहीदों को कभी नहीं भूल सकते और उनका बदला लेंगे। एक इराकी महिला का कहना है कि इराक से अमरीकी सैनिकों को निकालना हमारा मकसद है। हम नहीं चाहते कि आतंकवादी हमारे देश में बाकी रहें। हमारी मनोकामना आजाद और अतिग्रहणकारियों से खाली इराक की है। इंशाल्लाह शहीदों के खून की बरकत से ये दिन अमरीकी सैनिकों की उपस्थिति को खत्म करने वाला दिन होगा। ये अबू मेहदी अल मुहंदिस का आखिरी वीडियो है जिसमें वो अलकायम शहर में अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले स्वयंसेवी बलों को श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। इसके 2 दिन बाद ही ये कमांडर अपने साथी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के साथ अमरीकी हमले में शहीद हो गया। इराकी जनता ने प्रतिरोध के कमांडरों को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए पूरे देश में 400 कार्यक्रमों का आयोजन किया है ताकि उनकी याद को हमेशा दिलों में जिंदा रखें। जलाल खालिदी, IRIB न्यूज, बगदाद।
इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काज़मी ने 29 दिसंबर को एक ट्वीट में कहा है कि देश में अमेरिका के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के सैनिकों की तैनाती समाप्त हो गई है और उसके सभी सैनिक और सैन्य उपकरणों को इराक से बाहर निकाल लिया गया है। समीक्षा पेश करें साथी सैयद मिसाम अब्बास।
इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काज़मी ने 29 दिसंबर को एक ट्वीट में कहा है कि देश में अमरीका के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के सैनिकों की तैनाती समाप्त हो गई है और उसके सभी सैनिक और सैन्य उपकरणों को इराक से बाहर निकाल दिया गया है। रणनीतिक वार्ता के दौरान बनने वाली सहमति के मुताबिक इराक में अमरीकी सैनिकों की भूमिका अब सिर्फ परामर्श और बैकअप तक सीमित रहेगी। गौरतलब है कि अमरीका ने 2003 में इराक पर हमला किया था और सद्दाम के बासी शासन का पतन करके इस अरब देश पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इराकी जनता और प्रतिरोधी गुटों के कड़े संघर्ष के बाद 2011 में अमरीका अपनी सेना को इराक से निकालने पर मजबूर हो गया था। لیکن 2014 میں داعش سے مقابلے کے بہانے امریکہ نے ایک بار پھر اس دیش میں اپنے سینکوں کی تعیناتی کر دی۔ 3 جنوری 2020 کو امریکہ نے ڈرون حملہ کر کے بغداد ایئرپورٹ کے نکٹ ایران کے جنرل قاسم سلیمانی اور عراقی سوئم سیوی بلوں کے اپ کمانڈر مہدی المہندس کو شہید کر دیا، جس کے بعد دیش میں امریکہ کی اپستھتی کا کڑا ویرودھ ہوا اور عراقی سنسد نے 5 جنوری 2020 کو ایک پرستاؤ پارت کر کے دیش سے سبھی ودیشی سینکوں کے نکلنے کی مانگ کر دی۔ عراقی جنتا کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2017 میں داعش کی پراجے کے بعد دیش میں ودیشی سینکوں کی اپستھتی کا کوئی کارن نہیں بچا ہے، اس لیے ترنت روپ سے امریکہ سمیت سمست ودیشی سینکوں کو ان کے دیش سے باہر نکل جانا چاہیے۔ عراقی سوئم سیوی بلوں کے کڑے پرتیرودھ کے بعد بغداد اور واشنگٹن نے جون 2020 میں اس مدے پر وارتا شروع کی اور 26 جولائی کو واشنگٹن نے 2021 کے انت تک عراق میں اپنے سینیہ ابھیان کی سماپتی کا اعلان کر دیا۔ الفتح گڑھ جوڑ کے پرمکھ ہادی العامری نے ایک بیان جاری کر کے پورن روپ سے ودیشی سینکوں کے نشکاسن کی مانگ کی ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی روپ میں دیش میں ان کی اپستھتی سویکار نہیں ہے۔
श्रोताओं, भारत के चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि कोरोना और ओमिक्रॉन की वजह से अगले वर्ष होने वाले विधानसभा के चुनाव टाले नहीं जाएंगे। चुनाव आयोग ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक की और कहा कि विधानसभा के चुनाव की तारीख की घोषणा 5 जनवरी के बाद की जाएगी।
भारत में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों और कोरोना की तीसरी लहर की बढ़ती आशंका के बीच भारत के चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगले वर्ष के विधानसभा चुनाव कोरोना के कारण टाले नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों और ओमिक्रॉन के बढ़ते संकट के बीच मतदान की तैयारी को लेकर आज लखनऊ में चुनाव आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनावों की तारीखों की 5 जनवरी के बाद घोषणा की जाएगी। 5 जनवरी को मतदाताओं की अंतिम सूची जारी की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों की मांग है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव समय पर कराए जाएं।
सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाएं। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की, साथ ही रैलियों की संख्या को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशन को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न।
ज्ञात रहे कि कोरोना के मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से चुनाव टालने को कहा था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता, कोरोना संक्रमित मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर पर ही मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में मतदान का समय 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा। आयोग ने कहा कि रैलियों में नफरती भाषण और हो रही भीड़ पर भी कुछ दलों ने चिंता जताई है। उधर भारत में ओमिक्रॉन और कोरोना संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या ने कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 13,154 नए मामले सामने आए हैं और ओमिक्रॉन के रोगियों की संख्या 961 तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के 24 घंटे में 923 नए मामले सामने आए हैं और ओमिक्रॉन के रोगियों की संख्या भी 263 हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ऐसे लोग भी ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए हैं जिन्होंने विदेश यात्रा नहीं की थी। इससे प्रतीत होता है कि ये बीमारी सामुदायिक स्तर पर फैल रही है। उन्होंने कहा कि ये बीमारी फैलती तेजी से है लेकिन वैसी घातक नहीं है।
संतोष की बात यह है कि इसकी जो बीमारी है सीवियर नहीं है, ओमिक्रॉन है, बहुत तेजी से फैलता है, पहले वाले के मुकाबले इसकी फैलने की दर बहुत ज्यादा है। बट दूसरा ये है कि इसकी सीवियरिटी बहुत कम है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। देखो कल 923 लोग पॉजिटिव आए, परंतु डेथ जीरो है।
ओमिक्रॉन ने कोरोना की रफ्तार बढ़ा दी है, जिससे तीसरी लहर की आशंका काफी बढ़ गई है, लेकिन बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और बहुत से लोग कोरोना नियमों का गंभीरता से पालन नहीं कर रहे हैं। शमशाद कासमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज की बात, पर उससे पहले जनरल शहीद कासिम सुलेमानी के संबंध में पेश हमारा विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, शहीद कासिम सुलेमानी की दूसरी बरसी पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, ईरान में 30 दिसंबर को दूरदर्शिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में दूरदर्शिता या परिज्ञान के माध्यम से शत्रु को अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है। 30 दिसंबर को पूरे देश में मान सम्मान और लोगों की दूरदर्शिता के रूप में देखा जाता है। ये दिन वास्तव में धार्मिक आस्थाओं और आशूरा के सम्मान का दिन भी है। आज के दिन ईरानियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर ये दर्शा दिया था कि वे अपने खून की अंतिम बूंद तक उच्च धार्मिक नेतृत्व का समर्थन करते रहेंगे।
शहीद कासिम सुलेमानी भी उसी वातावरण में पले बड़े थे जहां पर उच्च धार्मिक नेतृत्व को विशेष महत्व दिया जाता है। वे बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति और जुझारू कमांडर थे। वे हर बात को बहुत ही गहराई से देखते थे। शहीद कासिम सुलेमानी वास्तव में न्याय की स्थापना और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करता थे। शहीद उच्च विचारों और ऊंची आकांक्षाओं के स्वामी होते हैं। वे महान ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। शहीद ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही अपनी जान न्यौछावर करते हैं। शहीदों के बारे में बताया गया है कि सारे शहीद एक समान नहीं होते हैं, बल्कि कुछ को कुछ पर श्रेष्ठता होती है। शहीद कासिम सुलेमानी की गणना भी उन शहीदों में होती है जिनको दूसरे शहीदों पर वरीयता हासिल है। इसका कारण शायद उनके भीतर पाई जाने वाली दूरदर्शिता है।
पवित्र कुरान सबसे दूरदर्शिता का आह्वान करता है। उसने इसके साधन भी उपलब्ध करवाए हैं। ईश्वर ने मनुष्य को आंख, कान, दिल और समझने के लिए अन्य अंग देकर दूरदर्शिता हासिल करने को कहा है। जो लोग दूरदर्शी होते हैं वे इस विशेषता के माध्यम से अच्छे और पवित्र जीवन का चयन करते हैं। इस प्रकार के लोग अपने जीवन में सच के मार्ग पर चलते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान बताने के बाद ईश्वर इसको सच्चों के लिए पाठ लेने वाली कहानी बताता है। सूरह यूसुफ की आयत संख्या 108 में पैगंबर इस्लाम को संबोधित करते हुए ईश्वर कहता है कि कह दो कि ये मेरा रास्ता है, मैं अपने मानने वालों के साथ पूरी दूरदर्शिता से सभी लोगों को ईश्वर की ओर बुलाता हूँ। पवित्र है ईश्वर और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ।
शहीद कासिम सुलेमानी की विचारधारा प्रतिरोध पर आधारित थी। वे धर्म और उच्च धार्मिक नेतृत्व में पूरी आस्था रखते थे। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली खामनेई ने अपने एक भाषण में शहीद कासिम सुलेमानी के बारे में कहा था कि वे स्वयं में एक विचारधारा थे। قاسم سلیمانی کی شہادت کے 2 سپتاہوں کے بعد ورشٹھ نیتا نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ہمیں شہید قاسم سلیمانی کو ایک ویکتی نہیں بلکہ ایک وچاردھارا کے روپ میں دیکھنا چاہیے۔
اپنے ایک انیہ سمبودھن میں اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا نے دوردرشتا اور پرتیرودھ کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ شترو سے مقابلے کے لیے ان دونوں کی آوشکتا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں اور یہاں پر بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 وشیشتائیں سبھی لوگوں کے بھیتر ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں وشیشتائیں ہوں گی تو پھر شترو کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
دوردرشتا وہ پرمکھ وشیشتا تھی جو شہید قاسم سلیمانی کے بھیتر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس وشیشتا کو شہید سلیمانی کے ویکتیگت ساماجک اور راجنیتک جیون میں بہت ہی اسپشٹ روپ میں دیکھا جا سکتا تھا۔ اپنی دوردرشتا سے ہی انہوں نے اسلام کے شتروؤں کے مقابلے میں لوگوں کو ایکترت کیا تھا۔ یہ صحیح بات ہے کہ ایشور اس پرکار کی دوردرشتا کو ان لوگوں کو پردان کرتا ہے جن کے بھیتر ایشوریہ بھے پایا جاتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت سنکھیا 28 میں ایشور کہہ رہا ہے کہ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ایشوریہ بھے رکھیں اور اس کے دودھ کو سویکار کرے تاکہ وہ اپنی انوکمپا کے 2 چیزیں تم کو پردان کرے اور تمہیں پرکاش دے تاکہ اس کے سہارے تم آگے بڑھو، اور ایشور کرپالو اور معاف کرنے والا ہے۔
دشمن کو پہچاننے میں شہید سلیمانی بہت ہی دوردرشی تھے۔ یہ وہ وشیشتا ہے جو بہت ہی کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ وگت میں بہت سی قومیں اور جاتیاں ادوردرشتا اور سمجھ بوجھ نہ رکھنے کے کارن وناش کا شکار ہوئیں۔ شترو کے سمبندھ میں حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو بھی شترو کے مقابلے میں نشچیت ہو جاتا ہے اسے شترو کی چالوں اور شڈینتروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وشو ورچسواد اور امریکہ کی شہید قاسم سلیمانی سے دشمنی کا مکھے کارن یہ تھا کہ وہ شترو کو بھلی پرکار سے جانتے تھے۔ وہ دشمنوں کی چالوں کو سمجھتے ہوئے اسی حساب سے آگے کی رنیتی تیار کرتے تھے۔
شہید قاسم کے بارے میں لبنان کے اسلامی پرتیرودھ اندولن حزب اللہ کے مہاسچیو سید حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ کھیتر میں امریکی جہاں بھی جاتے تھے ان کا سامنا شہید سلیمانی سے ہوتا تھا۔ سیریا میں بھی ان کو وہ ملے، یمن میں بھی شہید نظر آئے، لبنان اور عراق میں بھی امریکیوں کا سامنا شہید سلیمانی سے ہوا اور افغانستان میں بھی۔ پرتیرودھ سے سمبندھت جتنی جگہیں تھیں وہاں پر امریکیوں کو شہید سلیمانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیل کو شہید قاسم سلیمانی کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا تھا۔
جنرل شہید قاسم سلیمانی نے لبنان، سیریا اور عراق میں امریکہ اور اسرائیل کے شڈینتروں کو وفل بنایا۔ عراق میں شیعہ سنی مسلمانوں کو ایک جوٹ کرنے میں انہوں نے بہت مہتوپورن بھومیکا نبھائی اور سنی مسلمانوں کی سہایتا کی، جس کے پریڑام میں عراق میں اتی گرہن کاریوں کے مقابلے میں راجنیتک استھرتا اور مضبوطی آئی۔ سیریا اور عراق میں امریکی شڈینتروں کو وفل بنانے اور آتنکوادی گڈوں کا صفایا کرنے میں جنرل سلیمانی نے جو بھومیکا نبھائی ہے اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔
دوردرشتا کے لیے ولایت کے پرکاش کی ضرورت ہوتی ہے۔ قاسم سلیمانی کے استتو میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پوتر پریجنوں کے پرتی اتھا شردا پائی جاتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ انہیں ہستیوں کی دین ہے۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی جہاں بہادری، ونمرتا اور سوابھیمان جیسی وشیشتا کے سوامی تھے، وہیں ایک ایسی بھی وشیشتا تھی جو سرو ودیت تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ اپنے سمے کے ورشتم دھارمک نیترتو کا پوری نشٹھا کے ساتھ انوسرن کرتے تھے۔ جب نیترتو کی باگ ڈور سورگیہ امام خمینی کے ہاتھوں میں تھی، تب بھی اور اب جب کہ نیترتو کی ذمہ داری اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنے کے ہاتھ میں ہیں۔
امام خمینی اور ان کے اتراधिकारी آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے اپنے سفل نیتروں سے سدھ کر دیا ہے کہ وہ اتیاچار گرست راشٹروں کے لیے آدرش ہیں۔ انہوں نے سامراجیہ وادیوں سے مقابلے کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کا پرشکشن کر دیا ہے، جن میں سے ایک شہید جنرل قاسم سلیمانی تھے۔ ایران کی اسلامی کرانتی کو سفل ہوئے دشکوں کا سمے بیت رہا ہے، لیکن ایک بھی ادھارن ایسا نہیں ملتا جہاں پر جنرل قاسم سلیمانی نے ورش دھارمک نیتز کا الگن کیا ہو۔
دوسرے شبدوں میں، جس چیز نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کو وشو کے پیڑت لوگوں کے دلوں میں پریتم بنا رکھا ہے، وہ ان کی یہی وشیشتا تھی۔ ان کی یہ وشیشتا ہم سب کے لیے بہت بڑا پاٹھ ہے۔ جو بھی عزت، مان سمان اور لوک پریتا چاہتا ہے، اسے اس بندو کا دھیان رکھنا چاہیے، یعنی ورشت دھارمک نیتتو کا انوپالن کرنا۔ اپنے وصیت نامے میں شہید قاسم سلیمانی کہتے ہیں کہ ہمیں ورشت دھارمک نیتتو کا انوسرن کرنا چاہیے۔
جنرل سلیمانی نہ کیول وشو ورچسواد سے سنگھرش کے دھوج واہک تھے، بلکہ ایسے ویکتی تھے جنہوں نے ورچسواد کے ورودھ کھل کر سنگھرش کیا۔ انہوں نے داعش روپی وشو ورچسوادی پریوجنا کو دھوست کر کے سنگھرش کرتاؤں کے بھیتر آتم وشواس بھر دیا۔ انہوں نے پرتیرودھ کا جو راستہ دکھایا، آج اس پر نہ جانے کتنے لوگ چل رہے ہیں۔
دوستو، جنرل سلیمانی کو ہمارے بیچ سے گئے ہوئے 2 کا سمے ہو رہا ہے، کنتو آج بھی ان کے پریاسوں کے کارن سینکڑوں سلیمانی پیدا ہو چکے ہیں اور آگے بھی ایسا کرم جاری رہے گا۔ دشمن کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شہید قاسم سلیمانی نے پرتیرودھ کی بھاونا کا جو بیج بو دیا ہے، وہ رہتی دنیا تک اپنی فصل دیتا رہے گا۔ تو دوستو، کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران، سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔ آج کی بات۔
شروتاؤ، کاریکرم آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے، میں ہوں احمد عباس۔ کاریکرم میں ہم بات کریں گے بھارت میں لگاتار بڑھتی سامپردائکتا اور پرشاسن کے رخ کی۔ بھارت میں حالیہ دنوں پھر بار بار سامپردائکتا کو ہوا دینے والی گھٹنائیں ہو رہی ہیں۔ چرمپنتھی سنگٹھنوں کی اور سے راجدھانی نئی دلی کے علاوہ ہریدوار اور پھر چھتیس گڑھ کی راجدھانی رائے پور میں دھرم سنسد کے نام سے کاریکرموں کے آیوجن ہوئے۔ ان کاریکرموں میں الپ سنکھیکوں کے خلاف بے حد اتیجک بیان دیے گئے۔ بھڑکاؤ بھاشن دینے والوں میں ایک نام یتی نرسمہانند سرسوتی کا ہے، جنہیں پولیس کی سرکشا بھی پراپت ہے۔ وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لینا چاہیے۔
ہتھیار اٹھائے بنا دھرتی کی کوئی قوم نہ تو بچ سکتی ہے اور نہ ہی کبھی بچے گی. 40 کروڑ کی اکنومی ہے وہ 40 کروڑ آدمیوں کی. تم 100 کروڑ ہو, تمہارے یہاں بچے نہیں ہیں. آرتھک طاقت اب ان کے پاس چلی گئی. ہندو سنگھن اپڈیٹ نہیں ہوئے. لڑائی میں جیتتا وہ ہے جس کے ہتھیار شترو سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. جھوٹی باتوں میں بچوں پھنس مت جانا. زیادہ سے زیادہ بچے اور اچھے سے اچھے ہتھیار, یہی تمہیں بچانے والے ہیں.
کارکرم میں ساگر سندھو مہاراج نام کے ایک انیہ سادھو نے بھی بیان دیا. وہ آہوان کرتے دکھائی دیے کہ ہندو سمودائے کے لوگ مہنگے ہتھیار خریدیں, موبائل چاہے سستا رکھیں.
موبائل 5,000 والا بھی چل جائے گا, لیکن شستر کم سے کم 1,00,000 روپے والا تمہارے پاس ہونا چاہیے.
ایک مہیلا سادھو نے بھی بیان دیا کہ ہندو بچے کتاب کاپی چھوڑ کر ہتھیار اٹھا لیں. سادھوی نے مر جانے اور مار ڈالنے کی باتیں کی.
ان کی جن سنکھیا کو اگر ختم کرنا ہے تو ہم مارنے کو تیار ہیں, جیل بھی جانے کو تیار ہیں. اگر ہم 100 لوگ بھی سینک بن گئے اور ان کے 20 لاکھ بھی مار دیا ہم نے تو ہم وجے ہیں. ہرم سنسد نہیں ہے, یہ جاگروکتا ہے.
بے حد آپتی جنک بیان دینے والوں میں ایک سادھو سنت کالی چرن کا نام ہے. وہ تو اتنا آویش میں آ گئے کہ بھارت کے راشٹرپتا مہاتما گاندھی کو گالیاں دینے لگے.
بنگلہ دیش اور پاکستان ہمارے سامنے قبضایا, انہوں نے راجنیتی کے دوارا قبضایا. موہن داس کرم چند گاندھی نے ستیہ ناش, ناتھورام گوڑسے جی کو نمسکار ہے.
ان بیانوں سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ چرم پنتھی وچار رکھنے والوں کا سموہ ہے جو بار بار اسی پرکار کے بیان دے رہا ہے اور جگہ جگہ گتویدھیاں کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارواہی کیوں نہیں ہوتی. پورو پولیس ادھیکاری وکرم سنگھ کا ماننا ہے کہ ان لوگوں کو تو پہلے پکڑ کر لاک اپ میں بند کرنا چاہیے, اس کے بعد کاغذی کارروائی کرنی چاہیے.
جب کوئی شکایت کرے گا, شکایت نہیں کرے گا تو آپ کے امک درشک بنے رہیں گے. یو ول بی اے سائلنٹ اسپیکٹیٹر, یو ار ناٹ ڈیزائنڈ ٹو بی اے سائلنٹ اسپیکٹیٹر, یو ار ڈیزائنڈ ٹو رجسٹر این ایف آئی آر سوو موٹو اینڈ ٹیک ایکشن سو دیٹ اٹ ہیز اے ڈیٹرنٹ ایفیکٹ.
اس کارکرم میں بھارتی جنتا پارٹی کے بڑے نیتاؤں نے بھاگ لیا. ویسے بھاجپا کے نیتا ٹی وی ڈیبیٹ میں تو کہہ رہے ہیں کہ سرکار کارواہی کر رہی ہے. بھاجپا پروکتا نوپور شرما تو یہ کہہ رہی تھی کہ سب کچھ قانون کے حساب سے ہو رہا ہے اور کارواہی کی جا رہی ہے.
فار دیٹ میٹر ہارڈلی 24 hours have passed since registration of FIR. It's an open-ended FIR rather. The videos, the police is trying its best to access videos from this event. They'll be sent to forensic labs. Police would go after the organizers of the event. And within 24 hours, if you expect all of this inquiry to happen, within 24 hours of the registration of FIR, I really wonder which state do you belong to wherein any kind of police actually works.
Magar jane mane vicharak aur shikshavid professor Apurva Nand kehte hain ki is tarah ki ghatnaon mein kahin na kahin vartman bhajpa sarkar ki mansha bhi shamil hai. Unka manna hai ki bheed taiyar ki ja rahi hai aur use adhikarik sanrakshan diya ja raha hai. Apurva Nand ka kehna hai ki ye sab kuch sangathit hai,
ye hinsa sangathit ki ja rahi hai. हिंसा को समाज में भरा जा रहा है और यह भीड़ तैयार की जा रही है. हिंसा का अधिकार भी प्रदान किया जा रहा है कि अगर आप हिंसा करेंगे आपको कुछ नहीं होगा, यह अभयदान प्रदान किया जा रहा है. इसलिए आप जंतर मंतर पर खड़े होकर एक बड़ी रैली करते हैं, उसमें मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगाते हैं. जाहिर है इससे मुसलमान मारे नहीं जा रहे हैं, लेकिन इससे यह वातावरण बन रहा है कि आप मुसलमानों का खुलेआम अपमान कर सकते हैं اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہریانہ میں آپ سبھائیں کر سکتے ہیں اور سبھاؤں میں آپ مسلمانوں کو مارنے کی کھلک کا اعلان کر سکتے ہیں اور اگلے دن آپ کو بھارتی جنتا پارٹی کا پروکتا بنا دیا جاتا ہے. تو اس سے سپشٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ وشیش کر مسلمان اور عیسائی ویرودھی ہنسا کو شاسک دل پرشرے دے رہا ہے, بلکہ اس کو سنگٹھت کر رہا ہے, اس کو آیوجت کر رہا ہے. اور اس میں ایک چالاکی یہ ہے کہ یہ ہنسا سوائت نظر آتی ہے.
स्वामी आनंद स्वरूप हरिद्वार के विवादित कार्यक्रम के आयोजकों में से थे। वो इन कार्यक्रमों का बचाव करते दिखाई देते हैं, साथ ही अनेक दावे भी करते हैं।
अभी भारत के 9 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए। यह राष्ट्र जब बटा था 1947 में तो इस्लामिक लोग अलग हुए और जो देश था वो बहुसंख्यक हिंदुओं का था। हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं और मैं हिंदू धर्माचार्य हूँ तो ये चिंता हमारे लिए जायज है। उस संसद में क्या कहा गया उससे मेरा कोई बहुत लेना देना नहीं है, क्योंकि वक्ताओं के अपने बयान होते हैं। हमने जो बात कही थी वो ये कहा था कि हरिद्वार चूंकि धर्मनगरी है और यह घोषित रूप से तीर्थक्षेत्र है 1915 से आज तक, इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश भी वर्जित है। आज से नहीं है ये मुगलों में काल में रहा, अंग्रेजों के काल में रहा और आज भी वो अनवरत जारी है। तो मैंने यही कहा कि यहाँ क्रिसमस आप नहीं मना सकते, यहाँ आप ईद नहीं मना सकते, इसलिए कि यह हमारा तीर्थस्थल है। हम मक्का में जाकर के होली मनाएं दिवाली मनाएं तो यह अतिक्रमण है, या हम देवबंद में जाकर के होली मनाएं दिवाली मनाएं तो ये अतिक्रमण है। इतनी बात थी। दूसरा जो अन्य वक्ताओं ने कहा वह हिंदुओं को बचाने के लिए कहा कि भाई अपने घरों में ऐसे कानूनी हथियार रखिए जिसको कानून की मान्यता हो। हथियार रखना सबके लिए जरूरी है, हो सकता है कब लोग आक्रमण कर दे।
वैसे धर्म संसद के नाम से विवादित कार्यक्रम करने वालों और इन कार्यक्रमों में सांप्रदायिकता फैलाने और गालियां देने वालों से कुछ एक आयोजक असहमत भी हैं। आयोजकों में शामिल महंत राम सुंदर दास नाम के साधु को ये बात बुरी लगी कि कार्यक्रम के मंच से महात्मा गांधी को गालियां दी गईं। भारत में इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं और रोचक यह है कि कुछ आरोपी ऐसे हैं जो सारे ही कार्यक्रमों में मौजूद रहते हैं मगर उनके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती। टीकाकार राजेश जोशी कहते हैं कि उन्हें हैरत नहीं हुई क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है बल्कि बार बार होता रहा है।
लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है क्योंकि ये नारे इस तरह के पहली बार नहीं लगे हैं। जंतर मंतर में नारे लगे, वो जंतर मंतर में पहली बार नहीं लगे। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो रहा था तब उससे पहले ये नारे लगातार लगाए गए, बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों ने लगाए, साध्वियों ने लगाए और उनकी जो राजनीतिक जमीन तैयार हुई थी उस पर भारतीय जनता पार्टी की फसल उगी और वो फसल काटी उसने। तो ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है या मैं उससे असहमत हूँ कि ये नारे हमको आश्चर्यचकित कर रहे हैं। ये धर्म संसद जो हमें आश्चर्यचकित कर रही है नहीं कर रही है, ये एक कंटिन्यूएशन में चल रही चीज है। हरिद्वार में जो 17 से 19 तारीख तक हुआ वो एक उसका चरम विस्फोट कह लीजिए, लेकिन उससे भी चरम विस्फोट हो चुका है। लिंचिंग हो चुकी है, दंगे हो चुके हैं। दरअसल ये जो धर्म ध्वजाधारी हैं, जो भगवा ध्वज उठाते हैं, ये खुद सिद्ध कर रहे हैं, ये प्रूव कर रहे हैं। उनके आलोचक जो इनसे कहते हैं कि ये फासिस्ट ताकतें हैं, ये आतंकवादी ताकतें हैं, कि ये देश का बंटवारा कर देंगे, ये ऐसी बात कहते ऐसे नारे लगाते ये सिद्ध कर रहे हैं अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को।
इस तरह के रुझान के खिलाफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बयान दे चुके हैं। राहुल गांधी ने राजस्थान के जयपुर में भाषण देते हुए कहा था कि जो हिंदू होता है वो हर धर्म को मानता है, लेकिन जो हिंदूवादी होता है वो किसी धर्म को नहीं मानता, वो सिर्फ हिंसा में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ और अहिंसा में विश्वास रखता हूँ। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदूवादी था।
महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। फर्क क्या होता है? हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा, किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा। उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है।
भारत में जब से वर्तमान भाजपा सरकार सत्ता में आई है उस पर विश्व स्तर पर आरोप लग रहे हैं कि वो सांप्रदायिकता को संरक्षण दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बार बार रिपोर्टें प्रकाशित कर रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का बहुलतावाद भी खतरे में है और वहां का लोकतंत्र भी बुरे दौर से गुजर रहा है। ब्रिटेन स्थित विचारक और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदिर खान का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से सारी दुनिया में भारत की नकारात्मक पब्लिसिटी हो रही है।
ये मुफ्त में इंडिया की बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है। इंडिया का इंटरनेशनल इमेज एज ए सिविलाइजेशन, इंडिया का इंटरनेशनल इमेज एज ए डेमोक्रेसी, इंडिया का इंटरनेशनल इमेज के एक बहुत ही प्लूरलिस्टिक और टॉलरेंट सोसाइटी है, ये सारे सारे जो इंडिया ने कई हजारों साल से ये इमेज बना रखा था, सोने की चिड़िया वगैरह, ये सारा इमेज एक किस्म से खत्म होते जा रहा है इस तरह से। और इसका खाली पब्लिसिटी का कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये भी हो सकता है कि इंटरनेशनल लॉ का तवज्जो इंडिया पे फोकस हो जाए।
भारत एक बड़ा देश है जहां बहुत व्यापक व्यवस्था है और बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने अब तक विश्व स्तर पर भारत की छवि एक बहुलतावादी सहिष्णु देश के रूप में बना रखी है, मगर साफ दिखाई दे रहा है कि भारत की छवि विश्व स्तर पर प्रभावित हो रही है। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ हमारी ये सभा भी संपन्न होती है। अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़।